राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 जून 1993 साय लगभग 4 बजे गीता वंशवर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
लिखते हैं गौ माता दूध बहुत कम देती है, इस कारण से गरीब लोग पाल नहीं पाते, नुकसान होने के कारण वे बेच देते हैं और भैंस खरीद लेते हैं। तो अगर भैंस के अधिक दूध है, इस तरह से गाय के अधिक दूध हो तो गौ हत्या आज बंद हो सकती है?
दूध बढ़ाने की रीति तो आई है भाई, गो अंक है उसमें आप देखो कल्याण का गो अंक निकला है, उसमें नस्ल सुधारने का दूध बढ़ाने का एक बहुत बड़े लिखे गौ अंक, तो उसको पढ़ो उसमें देखो। और बात यह है कि गाय के दूध कम होता है तो गाय खुराक भी कम खाती है, भैंस के दूध ज्यादा होता है तो वो खुराक भी ज्यादा खाती है। गऊ को तो कभी दूध दे देती है, भैंस तो बिना मन दूध नहीं देती, उसका मन नहीं होता है, उसका बच्चा है वो पाड़ा पाड़ के खड़ी रहती, सामने देख रही हो नजर नहीं आता, वो वहीं रह जाता है, ऐसी देखती है। खूब था भाई राजी हो तब देती, तो भैंस की दे रीती है।
आजकल गायों के भैंसों के इंजेक्शन लगा करके दूध निकालते हैं,
बहुत खराब, बड़ी भारी हत्या है, वो कांपन लग जाता है, वो दूध खराब होता है, वो पीने से नुकसान करेगा, ऐसे कांपन लग जाते हैं। दूध अच्छा होता है, गाय के दूध को छानते हैं लोग, क्यों छानते हैं? उसमें गाय का रुआ ना आ जाए, रुआ ना आ जाए एक भी, तो दूध तो पी लेते हैं, दूध तो राजीव कर देती है, और रुआ होता है दुख पूर्वक तो वो हिंसा होती है। तो गाय भैंस कांप उठे दूध दिया जाए वो उसको खून की तरह होता है, वो दूध लड़ा नहीं जाए, पीना नहीं चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए भाई।
कहते हैं कि दूध में खून की बूंदे भी आ जाती है, ऐसा बोल
रहे बोलो
इंजेक्शन से?
हाँ इंजेक्शन कह रहे खून में खून की बूंदे आ जाए दूध में, तो आज ही सुना मैंने,
ये पटवारी जी ने बताया।
मैं तो दूध को मानता हूँ खून की तरह ही, काट करके खून लिया जाए दुख करके, वो दूध नहीं होता, खून होता है, गाय का पाप लगता है पीने से। कलयुग की क्या क्या लीला है भगवान जाने में, क्या मनुष्यों के मन में भाव पैदा हो रहे, गौ के प्रति कितना भाव था, उस जगह सुई लगा करके दूध निकालते, सुई से निकल जाए सब दूध, बेचारे कहां पूछे दूध निकल जाए, तो दूध कोई दूध तो होता है माँ का, जो वात्सल्य प्रेम से पैदा होता है वो दूध होता है, ऐसे वो दूध नहीं, वो तो खून की तरह है, बड़ा खराब है। क्या बताओ बोलो, भैंसों का दूध चला है तो भैंसों का दूध अच्छा नहीं होता, तामसी होता है, उसमें घी तो ज्यादा होता है, आलस ज्यादा है, नींद ज्यादा आती है, उसमें बुद्धि भ्रष्ट होती है, गौओं की बुद्धि तेज होती है। गाय का दूध पीने वाले ऋषि मुनि महात्मा संत हुए, और भैंसों का दूध पीने वाले। गऊ का नंदीश्वर होता है, उस पर भगवान शंकर चढ़ते हैं, और भैंसा होता है उस पर जमराज चढ़ते हैं। तो सुनाई होगा आपने, कथा आती है। तो जमराज की सवारी है वो दूध शुद्ध नहीं होता है, अच्छा नहीं है दूध। वो दूध घी गाय का ही बढ़िया होता है, तो गाय का दूध लेना चाहिए। कम दूध हो तो भी अच्छा है। आर्थिक दृष्टि होगी, धार्मिक दृष्टि नष्ट हो रही है। गौओं का पालन करने का धर्म है केवल दूध के लिए, स्वास्थ्य के भैंस दूध तो भैंस का उतना वो पुण्य नहीं है। गाय के रखने का पुण्य है, गाय के दर्शनों का पुण्य है। गाय चलती है तो गोखुर से जो रज्जी उड़ती है वो बड़ी पवित्र होती है। भागवत में भगवान के कृष्ण के वर्णन का दो बार आया है ऐसा, भगवान की अलके वो सब गौ के रज से शरीर ऐसे आती है, गोती है। शाम के वेत में गाय आने का समय होता है, उस समय में कन्यादान किया जाए, वो विवाह का समय होता है। मूर्ति नहीं हो तो गोधूली का वो मुहूर्त होता है। महात्मा ने गुदल क्या के गुदल क्या के गुदल क्या गुदल क्यों सा है गुदल क्या गुदल क्या क्या गोधूली का वो गुदल की होगी गुदल क्यों सावा है। तो वह भगत ने विवाह किया जाए, वो धूली का आती है उस समय, बड़ा मांगलिक समय होता है, शुद्ध समय होता है। गौ बैठती है तो चारा चर के बैठ करके ऐसे फुंकार करती है। आपने देखा वो पद्म पुराण में लिखा है कि उस फुंकार से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते हैं, जैसे आग से वे जैसे गौ राजी होती है। गौ बैठ रही थी, भूमि दाने के दान का भी बड़ा पुण्य बताया है, गौ के दर्शन का पुण्य बताया है, पालन का पुण्य बताया है। गाय को खुजालो खुजलाओ इस तरह से सहलाना है, पुंजालना कहते हैं मारवाड़ में, बने पुंजाले तो गौ बड़ी प्रसन्न होती है। गौओं के कान के नाक में आंख में यूं पावरी फिर निकल तो गौ बड़ी राजी होती है। गौ की खुश होती है तो साटती है, गौ की जीभ बड़ी कड़ी होती है जो साटती है। छोटे बछड़े होते हैं बहुत, एक दो दिन के उनको गाय चाटती है तो खून निकल जाता है बछड़े से, तो पता तो नहीं है, वो तो प्रेम से चाटती है, वो तो कोमल ऐसी कड़ी जीभ होती गाय की, देखा होता नहीं चाटे तो पता लगा कड़ी जीभ, ऊपर के दांत नहीं होते हैं, इस वजह से चारा चढ़ती हो जीभ के आटे से चढ़ती है, तो थोड़ा थोड़ा चारा होता है वो चढ़ नहीं सकती। ये घोड़ा है गधा है बकरी है भेड़ है ये दांतों से चढ़ते हैं, छोटे छोटे चारे भी चढ़ जाते हैं, गाय चढ़ नहीं सकती। तो गाय को चारा बड़ा लंबा लंबा चाहिए तो वो चढ़ती थी तरह से। भेड़े चढ़ाते भेड़ों को तो राज पालता है, गौओं को मारता है, गयों को मारते हैं, कोई तरह से मारे राम 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 राम। गायों के मारने की जगह ऐसी सुनी है कि इस तरह से नीति होती है तो जाती ज्यादातर धस जाती है, पूरी हो जाने पर दरवाजा बंद कर देते हैं, फिर बहुत गर्म गर्म पानी डालते हैं, ये कांप उठती है, ऐसे गर्म डाल के जीते जीते का चमड़ा उतारते हैं, जिससे चमड़ा नरम होता है और मोटरों में बढ़िया मोटरों में लगता है, मुकम्मल की तरह चमड़ा होता है, नरम चमड़े का जीती जी का उतारते हैं। अहमदाबाद में वहां सुना है मैंने कि मुसलमान गाय को मारते हैं तो मुख में काठ दे करके कावड़े डालते हैं, पांच सात दस दिन पड़ी रहे फिर उस जीती जीते का चमड़ा उतारते हैं, ऐसा नरम होता है। ऐसे इनके मारने का तरीका भी ऐसा ऐसा है। भारतीय विधान में पशुओं को ऐसे मारने का निषेध लिखा है, वो खटके मार दे वैसे तो लिखा है ऐसे नहीं मारना चाहिए, परंतु वो कौन मानता है, मैं मानते नहीं है, ऐसे बुरी तरह से मारते हैं, गायों को खड़ी करते हैं सैकड़ों ही, वो गायों खड़ी करके उनका गला काटते हैं, तो वो गाय देखती रहती है, वो कांपती रहती है, वो धीरे धीरे काटते हैं, और गला काट करके पूरा नहीं काटते, थोड़ा सा रख देते हैं, पूरा काटने से खून है वो पानी हो जाता है, तो इतने जीते रहने से खून खून रहता है, वो खून अधिक से अधिक निकलता है, इस वास्ते आधा गला काट करके परिणाम देती है जिससे खून अधिक निकले। ऐसे कई कई तरीकों से मारते हैं गायों को, बड़ी बुरी तरह से उसकी हत्या लगती है। इससे राज्य में विद्रोह होता है, बहुत संघर्ष होगा, शांति नहीं मिलेगी, कभी अशांति ज्यादा होगी, गायों की ऐसी बुरी दशा हो रही है। मैं बेचने वाले प्राय हिंदू है, और हिंदुओं में बल्दिया लोग ले जाते हैं सैकड़ों गायों को, जो सब बिक्री करते हैं, उन्होंने पैसा ऐसा ही बना लिया है, कहोगे आगे बिक्री होती है, दाम बहुत बढ़ते हैं, इस वास्ते सस्ते में खरीदा जाए, मुनाफा बहुत ज्यादा होता है, इस वास्ते सरकार गायों को मारती है। पैसे का लोभ है, पैसा इतनी काम की चीज है, गऊ है, प्राणी है, वो उत्पादक है, उसे दूध पैदा होता है, गोमूत्र गोमूत्र गोबर होता है, और उससे बछड़ा बछड़ी होते हैं, आगे गाय का वंश चलता है, ऐसी उपजाऊ चीज का नाश करते हैं, बहुत बड़ी भारी हत्या करते हैं। इसका कारण है कि आज राज्य में जगह जगह आपस में विद्रोह हो रहा है, पार्टियों में लड़ाई हो रही है, एक एक को मार रहे हैं। कलकत्ता में कहते हैं कि ये हिंदू सभा के वास्ते कहीं खड़े हुए उत्तर प्रदेश में, और कम्युनिस्ट ने उनको मार दिया, जो खड़ा उसको मार दो, कत्ल कर दो, ऐसी ऐसी बात है। मुसलमानों का धर्म ऐसा है, मुसलमानों की जो मूर्ति पूजा उसको मार दो, अब तुम्हारे क्या हर्ज होता है कोई मूर्ति पूजा करे तो, अरे मार देने से तुम्हारे क्या लाभ हो जाएगा, कुरान शरीफ लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, ऐसी ऐसी बातें है। राम 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 बात करने से भी करानी होती है, दुख हो ऐसी बातें है, ऐसे गायों की हत्या करते है सरकार, कहीं क्या दशा होगी भगवान जाने। गायों का घी 14 आना 15 आना 13 आना 14 आना सुशेर ऐसा हमारे सामने दिखता था, आज एक शेर के 100 रुपया लगे तो असली गाय का घी मिलना मुश्किल हो गया, 100 रुपया किलो मिलता नहीं है, ऐसी दशा हो गई, गायों को मार दी, घी कहाँ से पैदा हो, गाय का दूध कहाँ से आ, मार रहे, बड़ी बड़ी दशा थी। हिंदू एक नहीं होते, अगर हिंदू सब एक हो जाए तो आपकी जीत हो जाए, पर तुम क्या करें, हिंदुओं में क्या बैठा है बड़ा है, जो एक होते ही नहीं, सब एक हो जाए, मुसलमान जैसे एक हुए जैसे, तो इनका राज्य हो जाए, सब एक वोट देंगे हम तो, सरकार कई हिंदुओं को खड़ा कर दे, जो वोट बच जाए तो थोड़े थोड़े वोट आवे, मुसलमानों को सबका सब एक को पड़े, इतनी दशा हो रही है, और बालकों ने पैदा नहीं होने देते, ये लोग कहते हैं बालक हो गया अब क्या करें, बंद करो, तो ये संसार का हमने हिंदुओं का नाश करना है। बहनों से लड़कियों से मेरा कहना है, बहनों आप बच्चे पैदा करो, डरो मत, पालो, उगता जाती है बहन, लड़कियां है फिर उगता जाती है, क्या करें, लड़का एक हो गया, दो हो गया, फिर अब क्या करें, और क्या क्या करते हैं, आप लोग पैदा हुए जब ऐसा था, हम लोग पैदा हुए जब कोई बंद करते थे क्या, उसमें हम जीते थे, हमारी माताएं जीती थी, हमारे भाई बहन भी जीते थे, सबका पालन होता था, अब क्या हो गया है, केवल आराम की तरफ दृष्टि है, और ये दृष्टि है विदेशियों की, जो संसार नाश करने के लिए हिंदुस्तान के हिंदुओं का नाश हो जाए और खत्म हो जाए तो हमारा ये सब देश हमारा हो जाए, इस दृष्टि से कर्जा देते हैं, और कर्जे से ये लिखाते हैं कि तुम्हें इंद्रबंदी करनी पड़ेगी, गर्भ गिराना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा उसे लिखवा लेते हैं कि संत इंद्रोध का प्रचार करो तो हम देंगे कर्जा, नहीं तो कर्जा नहीं देंगे, कर्जे भी निर्देशा हुई है। अरे कर्जा क्यों होता है, पहले सब तरह से सम्पन्न थे, सर गंगा सिंह जी महाराज ने बीकानेर में बहुत आमद बढ़ा दी थी, अब कर्जा हो गया है, ये मिनिस्टर जो अफसर है ये मनाल खाए खाए करके देश को कमला कर दिया, अपना अपना पेट भरेंगे, मेरे को मिल जाए मेरे को मिल जाए, ये ख्याल ही नहीं है कि देश की क्या दशा होगी। और बड़े जोर से प्रचार करते हैं काम कम करो, काम ज्यादा मत करो और समय कम लगाओ काम में, छुट्टी तो जल्दी, फिर अगर दुकान ज्यादा खोली रखे तो उन पर कर देते हैं जुर्माना, कहती खुली क्यों रखी दुकान, उपजे तो कम तेल ऐसा हमें ज्यादा करो, भोग सामग्री ज्यादा करो, दशा क्या होगी, खर्चीला जीवन बनाते रहे पैदा करने में बंद करते, काम धंधा जाते मत करो तो देश दरिद्र होगा, नहीं तो और क्या होगा, खर्चा ज्यादा है पैदा कम, ये क्या है, ये दरिद्रता आने का लक्षण है। भाई बहनों में भी काम करने की प्रवृत्ति कम होती है, बच्चों के पालन करने में भी ये माताएं कष्ट उठाती है, तो बहनों माताओं आप क्या करोगी बताओ, आप बालकों का पालन नहीं करोगे तो क्या करोगी, इस बात बालकों को जन्म दो आप और पालन करो, जिससे देश का बड़ा भला होगा, आपका पुण्य होगा, और ये विरोध करोगे इससे आपको पाप लगेगा और दूसरे जन्म में लड़का होगा नहीं। लक्ष्मी जी ने अपना गर्भ डाल दिया, वो ब्रह्मांड बना, उस कारण से लक्ष्मी जी फिर संतान नहीं हुई, लक्ष्मी जी के अर्श से होने वाली गोपिका आदि का संतान नहीं हुआ, वही नहीं संतान, गर्भ गिराने वाले के संतान नहीं, रोएंगी पीछे कि हमारा बच्चा बच्चा कैसे होने, तुम बच्चे का इस तरह से गिरा कर पतन करती हो, तो इसका नतीजा बहुत खराब होगा, और अभी पालन करो तो कितनी अच्छी बात है, अच्छे पालन होंगे तो बालक बड़े बढ़िया होंगे, उत्तम होंगे, अच्छे आचरण वाले होंगे, एक और दो बालक होंगे, हम दो हमारे दो, तो ऐसे बालक होते हुए दुराचारी होते हैं, कारण क्या है कि पहले जो स्त्री पुरुष मिलते हैं केवल आसक्ति विशेष आसक्ति से, तो संतान आसक्ति वाले हो गए, फिर कर्तव्य रूप से करेंगे तो उनके बालक बड़े अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, इस वास्ते भाई बहनों से कहना है बालकों का पालन करो, जन्म न दो 5-7-10 बालक जन्म दिया अच्छी बात है। ये भागीरथ शरीर का 8 कितने भाई है, 7-8 भाई, 8 भाई, कितने कई भाई है उनके, कितनी बढ़िया बात है। माँ जी भी चौगा मैंने दर्शन किया, अब तो नहीं हुआ साथ, उन्होंने दर्शन किया, उनका भी शरीर अच्छा था, सेवा करते तेरे से, तो उनसे कोई शरीर नष्ट नहीं होता है, आलस्य और प्रमाद में बहुत समय बर्बाद होता है। इस वास्ते बहनों से कहना है, लड़कियों से मेरा विशेषता से कहना है कि बालकों को पालो, जितने बालक अधिक से अधिक हो जाए उतनी बड़ी आनंद की बात है, विशेष बात है, थोड़ी कृपा करो हमारे पर, कृपा करो, बालक आपके कई होंगे तो कोई साधु भी बनेगा, एक दो बालक होगा तो हम साधु कहाँ से आएंगे बताओ, ऊपर से प्रसाद बरसते नहीं है, जो भी साधु आ जाए तो आपके गोदियों से आते, हम जितने हैं सब बैठे हैं भाई बहन सब माँ की गोदी से आए हुए हैं, और माँ की गोदी बंद हो जाएगी तो कहाँ से आएगी, पढ़ेगी कहाँ से, इस बात माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा माना है, पिता से 10 गुना कहीं 100 गुना अधिक माँ का आदर करो, माँ की महिमा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसकी माँ का कल्याण हो जाता है, कुल पवित्र कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरे स्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेतः, जिसका चित्त परमात्मा में सिद्ध हो गया है उसका कुल पवित्र हो जाए, माँ का कल्याण हो जाए, तत्व ज्ञान बेटे को हो जाए तो माँ का कल्याण मुफ्त में हो जाता है, क्योंकि माँ का जितना परिश्रम है उतना किसी का परिश्रम हमारे जन्म में खास माँ का हाथ ज्यादा है, इस वास्ते माँ का कल्याण हो जाता है। तो माताओं आप माँ बनो, माँ की महिमा है, स्त्री की महिमा नहीं है, राम जी ने कहा है सीता जैसी स्त्री के लिए, कहते ये लक्ष्मण मर जाएगा तो ये बड़ी भारी हानि है, नार विनाश ये कुछ ज्यादा कीमती बात नहीं है, नारी मर जाए चली जाए चली जाए, और उत्तम भाई ऐसा मेरा मिलन सोदर भाई नहीं मिलेगा, नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी हानि है वो नरकर है, माता की हानि नहीं बताई है नारी की हानि, तो आप माता नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, आप बहनो कृपा रहो, आप माता बनो, पांच पांच सात सात आठ आठ दस दस आपके बालक हो, हम बड़े खुश होंगे, बड़ा हमें आनंद मिलेगा कि हमारे भाई कितने हो गए, कितने भाइयों के लिए आप कृपा करो, माताओं आप मेहरबानी करो। थोड़ा कष्ट सह लो, कोई बात नहीं है, मगर देश का धर्म का कितना हित होगा। तो धर्म की कितनी मार्मिक बातें हमारे सनातन धर्म में है, वो कौन पढ़ेगा, किसको मता पता लगेगा इसका। परमात्म तत्व की प्राप्ति कितनी सुगम है, कितनी शेष है। बहुत से कथा बातें कहते हैं बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। पंढरपुर में एक सतगुरुमार संग रहे, तो मैंने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, ये मेरा तो स्वभाव कहने का। तो कई बोले कि महाराज संतों की वाणी में ही लिखा है कि परमात्मा तत्व की कठिन बात है। तो मैंने बड़े जोर से कह दिया कि मैं मराठी जानता नहीं हूँ। इस बार जितने एकनाथ जी महाराज और ज्ञान देव जी, सोपान देव जी आदि संत हुए, ज्ञानेश्वरी आदि गीता है, तो मेरे को मराठी आती नहीं है, मराठी में समझता नहीं हूँ। परंतु मेरी धारणा है कि तुकाराम महाराज आदि बड़े संत थे, वे सिद्ध पुरुष थे, और उनकी वाणी में परमात्मा प्राप्ति की सुगमता न कहे ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने भी सुगमता कही है, उन्होंने विरोध किया कि कठिन बताया है, कठिन बताया पर सुगम बताया है। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं तो वे सुगम न बतावे हो नहीं सकता। मेरी श्रद्धा है कि बड़े पहुंचे वो पुरुष ने। फिर वो मराठी बोल गए, एक भाई कैसा लिखा है कि परमात्मा प्राप्ति सुगम है, और जनरल करके देखा, उनको पता किया तो है नहीं, है कठिन है कठिन है, कथा बात सब ऐसे ऐसे करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति आपको कठिन है तो सुगम क्या है बताओ आप। अपने स्वरूप का बोध आपके लिए कठिन है तो सुगम क्या है। तो सबसे सुगम ये बात है। तो ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है, हमारा मोक्ष शास्त्र कहता है, हमारे पुस्तक में ये बातें आई है, ऐसे सिद्धांत की बातें आई है। ऐसी बात कौन बताएगा, किसी सिद्धांत में ऐसी बात मिलेगी। और वो सिद्धांत जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। तो आप बहन माताओं से प्रार्थना है कि आप हमारे भाई बंधुओं को बढ़ाओ, हमारे बहुत भाई पैदा हो जाए बहुत से, तो हम उत्सव मनावे, आनंद मनावे कि हमारे बहुत भाई हो गए, बहन होगी बहुत, और लड़कियां गर्भ में परीक्षा होगी, जिनमें बच्ची हो तो गर्भ गिरा देते हैं। अरे मातृ मातृशक्ति की हत्या है, बड़ी भारी हत्या है ये, मातृशक्ति है वो, छोटी बच्ची है वो, गर्भ में बालिका है वो, माँ बनने वाली है, उनसे कई बालक पैदा होने वाले हैं, ऐसी मातृशक्ति की हत्या करते हैं, बहुत बड़े भारी पाप की बात है, गर्भ गिरा देते हो। इस वास्ते मत करो बहनों, कृपा करो, थोड़ा बालक पैदा करो। विदेशी लोगों ने ऐसी पहले ये संतत निरोधक बनाया, जिससे विज्ञान के ने सबने मिलकर कहा कि वंश नष्ट हो जाएगा, देश नष्ट हो जाएगा। तो फिर सरकार से एक एक घर में चार चार पांच पांच कमरे बनाए, और सरकार से मदद दी कि इनमें करो, अलग अलग रहो, बच्चे ज्यादा पैदा हो ऐसा काम करो, उनको मदद मिलती, ज्यादा जिसके बालक उसको इनाम मिलता है, अधिक बाल जिस माँ के होते हैं उस माँ को इनाम मिलता है, जीविका मिलती है, सहायता मिलती है अधिक बालकों को, राज से यहाँ राज से महाराज गर्भ गिरावे उसको इनाम मिलता है, नसबंदी करे जो करे उसको इनाम मिलता है, गर्भ गिरावे उसके 100 रुपया तो उससे लेते हैं, और दूसरे जो सरकार लेती है और रुपया, तो डॉक्टर लोगों को रुपया मिलता है। इस बात से ठीक नहीं है, तेरे रोग हो जाएगा, यूं करके बच्चा दाने निकाल देते हैं जिसके गर्भ रख ही नहीं सके। ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर अपने लोभ में आकर ऐसा कर रहे हैं, क्या करें बताओ। तो पैसे के लोभ से बहुत काम क्रोध लोभ है, तो लोग बड़ी भारी हत्या करने वाला है, नरकों का दरवाजा है, उन सब पर जा रहे हैं। सरकार भी लोभ पर है, जनता भी लोभ पर है, व्यापारी भी लोभ पर, ये बात हो रही है। इस वास्ते बहनों से कहना है कि आप अपनी बहन बेटी बहू हो उसका पालन करो, और संतान संतान पैदा करो, पालन करो। ये हमारी खास चीज है भारत की, जो भारत बच सकेगा आपका वंश बच सकेगा, मुसलमान तो हिंदुओं को मुसलमान बनाते, ईसाई हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, ये उधर बना रहे हैं, इधर आप जो संत निरोध कर रहे हो, पहले से संख्या नष्ट कर रहे हो। सरकार ने मर्दमशुमारी के उसमें हिंदुओं की संख्या नहीं बताई, बताई बताओ भी इतने बैठे बताओ आप क्यों नहीं बताई? क्या पहले अल्पसंख्यक मुसलमानों की सहायता करूं, अब हिंदू भी अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं तो अब ये अल्पसंख्यकों की सहायता विशेषता करो, ये बोलने में कठिनता हो जाएगी, इस बार संख्या ही नहीं बताई। हिंदू कितने हुए मर्दमशुमारी ठीक तरह से बताओ, किसी को मालूम हो तो कि हिंदू कितने हैं मुसलमान कितने बताते नहीं, सिपाही हुई बात है, पाप है वो आदमी छिपाता है, पाप को प्रकट करने में बड़ी मुश्किल होती है, सरकार भी पाप करती है तो छिपाती है, थोड़े होता था पहले होता था प्रदूषण संख्या आती थी अब नहीं आती, छिपा दो मालूम मत माने दो, अल्पसंख्यकों के नाम से इनको खूब छुट्टी दो। और छुट्टी देने वाले मुसलमान कैसे होंगे, मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे, राज्य सरकार की बात नहीं मानेंगे, ये मुसलमान सिद्ध गए हमने धर्म को मानेंगे उसकी बात नहीं मानेंगे, सौड़े कह रहे हैं फिर भी होश नहीं होता है, बड़ी क्या करें, दुख की बात है। प्रत्यक्ष मुसलमान कहते हैं हम राज की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि राज के तो दब गया उनसे ये वोट मिलते हैं हमारे को, वही तो मुसलमान बोल नहीं सकते, विरुद्ध बोल नहीं सकते, वे कहते हैं राज की आज्ञा नहीं मानेंगे, अब बड़े तो क्या होगा, वे अपना राज करेंगे, मारेंगे हिंदुओं को सबको मार करके बस, बाकी बच्चे कम कम होते होते कम हो जाएंगे। मैंने ये बात सुनी है कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम कोई चीज रहेगी नहीं, क्या मधुर हमारे दो अधिक जमेंगे मरेंगे, कमती होते होते मरते मरते मर ही जाएंगे, पैदा होगी नहीं रहती, ऐसे गायों की और हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। आप गऊ को पालो, बकरियों को पालो, जिससे हमारा गो वंश रहे, ऐसे ही आप लोग कृपा करो जो हमारा वंश रहे, हिंदू वंश रह जाए, इससे कल्याण होता जी का।
एक सज्जन लिखते हैं कि मेरी पुत्री लगभग 22 साल की है, सत्संग में हम लोग आते हैं, 2 वर्ष पहले उसको यहाँ की सत्संगी बहन ने कह दिया कि विवाह नहीं करना, तो अब वो विवाह के लिए मना करती है, इससे मैं दुखी हूँ, उसकी माँ दुखी है, हम सब लोग दुखी हैं, उसमें कोई त्याग वैराग्य भी इतना दिखता नहीं, मैं भगवान में कोई प्रेम ही दिखता है।
अरे गर्भगृह देखो प्रेम हो गया भगवान में, वही आफत उसकी आएगी, ब्याह हो जाएगा, बच्चा बच्ची होंगे, आफत हो जाएगी, जैसे के लिए मोर से आने गाय ने बच्चा के मच्छे और नंदा अच्छी, ये नहीं होगा लड़का लड़की तो आराम से रहेंगे, केवल आराम और बस भोग ये अच्छा लगता है, इस वास्ते ऐसा करते हैं। मैं तो कभी लड़कियों को कुंवारी रहने का सम्मति नहीं देता, विवाह करना चाहिए लड़की को, लड़की विवाह नहीं करेगी जब तक माँ बाप है तब तो उनका राज्य है, अरे भाई रह जाएंगे भौजाइयों को नंद सुहाते नहीं, प्राय ऐसी बात है, कोई कोई जगह अच्छी बात है उन्हें प्राय करके नंद नहीं सुहाते, वो कहाँ जाएगी, बड़ी दुर्दशा होगी, इस बात से लड़कियों को अपने ठीक तरह से विवाह करा लेना चाहिए, कुंवारी नहीं रहनी चाहिए। ससम आई वो किसी बहन ने कर दिया, हत्या करती हो जैसे कहती है, उपदेश देती हो कि ब्याह नहीं करना चाहिए, पूछा जाए तुमने क्यों किया ब्याह, हमारे तो खास वंश की आप माँ हो, माँ माँ अगर पुत्र पैदा नहीं करेगी, माँ पालन नहीं करेगा तो कोई चोर डाकू पालन करेंगे, तो माँ कहाँ है, माँ याद आती है तो कहावत है मारवाड़ी, अब की बला में माँ याद आवे, छोरा ही घूमे मन ही बोली माँ के खेलने जावे, भूख लगे जरा माँ माँ करे, माँ के पास आवे, माँ जी माँ की भोजन कराती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, और कौन है आपको स्नेह से ऐसा भोजन कराने वाला, माँ के समान रसोईया रखते हैं वो तो भोजन दो फुल्का कम खाओ तो अच्छी बात, कम भोनी पड़ेगी, माँ ही ऐसी है, नहीं थोड़ा खा ले थोड़ा बेटा और खा ले, राम जी को कहा कुशला माँ ने आज बेटा जल्दी खा लो कुछ न कुछ, सवारी निकलेगी बहुत देरी हो जाएगी, भोजन कब करोगे, मधुर कुछ खाओ कुछ खा लो, ये माँ में शक्ति है, ये मात्राओं में शक्ति है, साधु कोई भूखा बैठा है या पुरुष कहीं निकल जाए तो पूछ दे नहीं माँ ये कि बाबा जी कुछ खाओगे, ऐसी बात होती सभी। एक संत ने कहा ठाला उला ठिटकारिया कूड़ा जोड़े हाथ पत्र तीकन हुए वायर साथ ठाला भूला ठिटकारिया कूड़ा जोड़े हाथ पत्र तीकन हुए हवे वायर साथ जब माल मिले खाओ सबसे ये साधुओं को जो चीज मिलती है माताओं के द्वारा मिलती है वो होती है भाई मैं बड़े सूखा सका है कहीं करें माताओं की रक्षा करो अरे माँ की रक्षा करो माँ 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 कितना मीठा शब्द है माँ ये शब्द मधुर मीठा शब्द माँ 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 तो माँ बनो माँ माँ बनो खूब बनो माँ हम तो बहुत राजी हो जिस माँ के ज्यादा ज्यादा बालक हो हम बड़े राजी होते हैं हम राजी होते हैं तो कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दो ब्राह्मण को भोजन कया दे रहे पांडे आशीष वो कह आंतरा देसी भी आशीष मैं कह दू आंतरा भले आशीष देसी तो मारे तो आशीष स्वतः ही मारे प्रसन्न था उसी आशीर्वाद को जानवर वह आप बालकों की हत्या करो फिर गिरावर को मैंने आशीर्वाद दे तो हमें साफ दे देसी होते तो आशीर्वाद क्या था तो डाकन बन गई माँ थी जो पालन करने वाली पैदा करने वाली वो नष्ट कर दिया पुत्रादिनी सर्पणी सिद्धांत गोविंद माता है पुत्रादिनी सर्पणी सर्पणी होती है उसकी एक वास अंडे होते हैं वो ऐसा गोल घेरा घर बैठ जाती है जो सर्प जन्मते अंडा फूटते उनसे बाहर निकल जाता है वो तो बच जाता है मित्र को सब खा जाती सर्पणी खुद ही अपने बालों को खा जाती है सर्प को इस वास्ते ये पुत्रादिनी सर्पणी पुत्र का नाश करने वाली सर्पणी है अब माँ कैसे कहे पुत्रवती जूती जग सोई जग रे ऊपर भक्त दास उषित हुई जो भगवान सिद्ध हुए भगवान का भक्त बने अब सुत ही नहीं तो भगवान का भक्त कैसे बनेगा कोई ऊपर से बरसेगा परमा परमा तो आपकी गोदी से बड़े बड़े संत निकले हैं अब सुने नहीं पद सुनियो भारत नारी क्या हो गई दिशा तुम्हारी राम कृष्ण राम और लक्ष्मण जो धातु में रह जाए थे भीष्म को भीष्म अर्जुन भीमसेन से जो धातु में रह जाए थे अरे तुमने ही गोद खिलाए थे तीर मदार पूज कर तुमने पैदा किए हैं मदारी क्या हो गई दशा तुम्हारी तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी अरे भारत नारी ने भारत की माँ हो तुम भारत में जितने जन है स्त्रियां हैं जितने पुरुष है सबकी माँ आप स्त्रियां हैं कि स्त्रियों की माँ आप पुरुषों की माँ आप जो जनता जितनी सबकी माँ हो अरे आप ही पैदा नहीं करोगे तो हम कहाँ से आएंगे बताओ और कोई है ऐसी चीज जो हम आवे साधु ही बनेंगे तो कई बच्चे होते हैं तब कोई साधु ही बन जाए मेरे सामने कोई कोई बालक आता है तो उसी वो भाई एक ही है अरे तू संत बनेगा साधु बनेगा ब्याह नहीं करूंगा तो हमारे तो बड़ा घाटा पड़ जाएगा समझे पांच सात बालक साधु से क्या पता लगे वो बहुत सही हो जाए और साधु बने उन साधुओं में अच्छे साधु निकल जाए अरे कई होते हैं जिसमें कोई अच्छा भी निकले कोई बुरा भी निकले है ही नहीं तो क्या निकलेगा अच्छा बात कहाँ होंगे पैदा ही नहीं होने दोगे आप पहले से ही रोक दोगे बड़ा आनंद हो जाएगा इस वास्ते ऐसी बात मत करो बच्चियों मेरी बात मानो छोटी छोटी लड़कियों मारते कन्या की तरह बेटी की तरह उनसे कहते मेहनत हो ख्याल रखो जाए अरे हमें बूढ़े आदमी तुम मेरी बेटी के जमान मेरा कहना तो मानो कृपा करो कृपा करो बूढ़ा कहना नहीं मानोगे साधु अजय कहना था रेख माने आप भिक्षा भी देती हो हमारे को हम ये अन्नदाता है हमारी इनकी अन्न मिलता है और तुम भी ऐसा करोगे तो हमारी क्या दशा होगी बताओ पुरुष बहुत अच्छे हैं कमाते हैं पर रात्रि में आकर के माँ की शरण लेते हैं स्त्री को तो स्त्री की शरण लेते हैं एक अफसर थे वो कह रहे थे कि मैं तो बाहर से आता हूँ जूती वही रख देता हूँ वही सब खोल करके और कपड़े को पैर कर रख देता हूँ। तो हमारी कुर्ता है, हमारे कोट है, हमारा टॉप है, गमछा है, वो सब हमारी स्त्रियाँ तैयार करती रखती है, स्नान कराती है, पालन कराती है, भोजन कराती है। आपके सिवा सेवा कौन करेगा? आप गर्भ में आते हैं, आप गिरा दोगी तो वे कहाँ से आओगे बताओ? फिर नर के रह गए, कुंवारे कुंवर रहेगा, पैदा नहीं होगी तो मर जाएगी तो वंश नष्ट हो जाएगा। दिलीप ने तो वंश के लिए गऊ की सेवा करी, वंश से करता अनंत कीर्ति सुलक्षणायाम तनाते रघुवंश कहलाता है। राम जी का वंश नहीं, दशरथ जी का वंश नहीं, आदि का वंश नहीं, रघुवंश। तो वो गाय की कृपा से रघु पैदा हुआ दिलीप के, उसके नाम से वंश चलता है, वंश से करता रहूं ऐसे। ना तो आप लोग कृपा करो, माताओं बहनों बच्चियों सब ख्याल ख्याल करो, हमारे कहना मानो। आप अंधा तो हो, हमारी बात नहीं मानोगे? बच्चे की बात तो माँ मानती है, हमारी तो माता हो। संत आए थे वो कहते भाई कृष्ण, वो कहते तुम ही हमारे माँ बाप हो और तुम ही हमारे बेटा बेटी हो। दूसरी बातें कैसे कि हम तुम्हारे से पैदा हुए, तुम्हारे से पढ़े, इस बार हम तुम माँ बाप हो, तुम हमारे साधु हो गए। और बेटा बेटी कैसे, हम बीमार हो जाए तो सेवा कौन करे? तुम ही करोगे, तो बेटा बेटी तुम ही हो, कहाँ से लाओ? हमारे तो बेटा बेटी तुम ही हो, समझिए। बेटा बेटी सेवा करे, बूढ़े बाबा की और कौन करे? तो आप सेवा करने वाले हो, तो आप माँ बाप ही हो, आप बेटा बेटी भी हो, समझिए। सबका पालन कौन करे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो ब्रह्मचारी कमाते नहीं, वानप्रस्थ कमाते नहीं, सन्यासी कमाते नहीं, कमाते क्या करते हैं? गृहस्थ। वो गृहस्थ भी आप नहीं रहो तो हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारे को अन्न देगा बताओ? आप कृपा करो। तो वो कह दिया कि हमारी लड़की को कह दिया कि तुम विवाह मत करो। तो ऐसे कह रहे अच्छा नहीं, आपका बात ही अच्छी नहीं है। आप आराम की, भोग की, सुख की ही प्रशंसा करते हो, परंतु वंश की तरफ देखते भी नहीं। नाश हो रहा है जनता का। वोट के जमाने में ज्यादा आदमी होगा, उनकी बीत होगी, उसमें कम करते हो आप तो क्या दशा होगी? मुसलमान तो बढ़ाते हैं, 3-4-5 ब्याह कर ले, उनके लिए सूत है, हिंदू नहीं कर सकते ब्याह। तो क्या बात है? ये खोटी दशा है। वो कर्जा लिया है ना, उनके गुलाम होने से वे कहते हैं कि ज्यादा पैदा ना हो तो हमारे छोटे थोड़े हो जाए, कर्जा हमारा चुकाने को मिलेगा नहीं तो कब्जा हमारा हो जाएगा, देश हमारा हो जाएगा, ऐसी दुर्भिसंधि है। अब कहते हैं अखबार वाले कुछ चेत करते हैं, वो अखबार वाले को लिखते हैं सब कुछ। अभी कल भेषणा जी, मैं तो फिर अखबारी जनता में हूँ नहीं, अखबार पढ़ता नहीं, इतना रेडियो सुनता हूँ, इतने बारे में कोई कुछ सुना देते हैं, तो ऐसी चर्चा हो रहा है। तो इस वास्ते वो ऐसा मत उपदेश दो कि तुम ब्याह मत कर। तुम्हारी कन्या है वो अगर स्त्री धर्म में हो जाती है तो माँ बाप को खून पीना पड़ता है, ऐसा दोष लगता है, शास्त्र में ऐसी आज्ञा है। इस वास्ते जब तक हृदय दर्शन न हो तो उससे पहले पहले ब्याह कर दो, रहो घर पर परंतु ब्याह पहले पहले कर दो। ऐसी बात आई हमारी, 13-14 वर्ष ऊपर नहीं होनी चाहिए कन्या। लोगों में कहावत है फिर या 13 मर्द 18, मर्द 18 वर्ष का होता है वो 13 वर्ष की हो जाती है। तो इस बात कन्या होगा विवाह जल्दी करो, जल्दी करना चाहिए। अब बल मिले नहीं बेचारे, हैरान हो जाए क्या करे, आजकल बल मिलता नहीं, आजकल छोरे बिकने लग गए, नीलाम होने लग गए, कहते हैं कि वो तो हमारी कन्या है। और दूसरे आदमी कहता है वो खुद को तो पूछ रहे कि हिम्मत नहीं होती कि उन्हें कन्या है कि खर्च कितना करेगा रुपया, 30,000, 25-30-40,000 तो हमारे हो गए हैं। अब बढ़े सो पावे लाम हो रहे हैं छोरा, ये दशा अपनी लड़कों का 50,000-40,000 लाख 3-3 लाख रुपया लगे जो छोरा मिले। अब बेचारे सोने वाले कहाँ से लावे इतने रुपया? गोरखपुर में कायस्थ तो वो मिले कि मेरे मन में आते कि मैं ईसाई बन जाऊं क्योंकि हमारी लड़कियों की शादी तो हो जाए कम से कम, मैं कमाता हूँ, मास्टर हूँ, अध्यापक अध्यापन थोड़ी तनख्वाह मिलती है, खर्चा चलना मुश्किल, अब हजारों रुपया कन्या के लिए कहाँ से लाऊं, ऐसी दुर्दशा हो रही है। तो बहनों से कह रहा है कि आप कन्या लो, कुमकुम कन्या, कुमकुम कन्या, और नहीं रुपया नहीं लाएंगे। पुरुषों का तो रुपया लेने के लिए इनके फाड़ मिठाई लाने की बड़ी ही भाग भूख है कि बेटे के शास्त्र से मिठाई आ जाए, फड़ आ जाए, इतनी चीजें आ जाए, तो राजी होती है, नहीं लाती है तो बहू को कहती है क्या लाई तेरे घर से, क्या लाई बता, तुमने कुछ दिया ही नहीं। यहाँ तक नौबत बजती है, छोरी को मार देते हैं कि दूसरा ब्याह होगा तो और कुछ आवेगी, देखे जाएगा, इस बात इसको मारो, ये दशा हो रही है। धर्म से ही मारो, ब्याह में ही मारो, मारो तो मारो, ये मातृहत्या हो रही है, बड़ा भारी पाप लगेगा, कृपा करो, ऐसे अन्याय मत करो। लुगाया सिखा देती है बेटे को, जिसने बेचारी बहू की बड़ी तंगी होती है, क्या करे वो। ये छोकरे आजकल के छोरियों को बड़ा दुख देते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं, बड़ी त्रास देते हैं कि चलो हमारे साथ। कलकत्ते में पहले मैं रहता था तो पहाड़ी में जाता तो वहां से भिक्षा लाने में भीड़ बहुत, मुसलमान मैं तरफ से तो विचार आता भाई, एक बाड़ी में गए 15-20-40-50-50 घर रहते हैं एक बाड़ी में, तो उनसे कई घरों से मांग करे वहां एक कमरे में बैठ पा लेता था। तो बीकानेर के वेश्य उनके वहां पर मैं गया, वहां बैठे भिक्षा पाई, भिक्षा पाई तो स्त्री पुरुष आ गए पास में, वे कहने लगे कि महाराज देखो कुछ दिनों माहेश्वरी भवन में रात्रि में मैं सत्संग कराता था, उसमें माताएं आती थी, गोविंद जी ने माता भी है, पुरुष ही पुरुष आते हैं तो माताएं भी आती थी, उन्होंने शिकायत की ये देखो ये एक ड्राइवर को लेकर के आपकी सत्संग में चली जाती है, ये हमारे बिना ये के लेकर चली जाती है। मैंने कहा भाई बहना आप इतनी खाना चाहिए, मर्यादा रखो, पति के साथ आओ, अकेले क्यों आते हो सत्संग में, महाराज जी तेज होगी, कहते तेज होगी, कहते है हम कहते हैं ये हमारे साथ चलते नहीं, हम कहे हमारे साथ चलो सत्संग करो, मानते नहीं हमारे, हम क्या करें। तो कुछ बोले कि हमारा कहना ये नहीं मानते, हम ही का कहना नहीं मानते, आप क्या देते हैं, हम रेस में जाते हैं घोड़सवार घोड़ा जान दौड़ते हैं उनमें जाते हैं, तुम चलो हमारे साथ, ये चलते ही नहीं। तो वो बोली भाई कैसे चले पुरुषों के बीच में धक्का धक्की में, हम ऐसे पुरुषों धक्का लगे कैसे जाए, हम कैसे दोनों लड़ने लगे। मैं बात तो ठीक कहती भाई, ये तो ठीक कहती है बात, पर पुरुषों से धक्का लगे उनके पास जाकर बैठे हैं हमारा मन नहीं करता, बहुत बढ़िया बात है इनकी। फिर मैं कहता हूँ मैं भाई कुछ तेज हो गया, मैंने कहा सुनो बात बताओ, आप आदमी हो सुधारक, आप मानते हो आजकल की बातें, और स्त्री पुरुषों को स्वतंत्रता, स्त्री स्वतंत्र है पुरुष भी स्वतंत्र है, इसको आप मानते हो, हम मानते हैं। तो मैंने कहा भाई सुनो बहनों, आप सुनो मेरी बात, मैं कह कष्ट करना मत वैसा, मैं एक बात कहता हूँ, स्त्री स्वतंत्र और पुरुष स्वतंत्र, ये आपका सिद्धांत है, तो स्वतंत्र स्त्री होगी तो स्त्री चाहे जिस पुरुष को लेकर के दरवाजा बंद कर कमरे में रह सकती है, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है बताओ, तुम भी स्वतंत्र हो, पुरुष स्त्री स्वतंत्र है, ऐसी स्त्रियां रहेगी। आप कैसे शिकायत करते हो रात में आपके सत्संग में स्त्री आ जाए, आप आते नहीं और शिकायत करते हो सत्संग में जाने के लिए, तो स्त्रियों की ये बात है, ऐसे पर पुरुष को रख करके दरवाजा बंद करे कमरे में रहेगी, आप इनको ना नहीं कर सकते, ये क्या है मौके, ये स्त्री का धर्म है, स्त्री का धर्म है ये, आपकी दृष्टि से धर्म है, हमारी दृष्टि से धर्म, सुधारकों की दृष्टि से भी ये धर्म है, और हमारी दृष्टि से वो पतिव्रता धर्म है उसका, पर पुरुष को लेकर आधा बंद कर दे ये धर्म है, बड़ा झगड़ा ये कैसे, तुम तो स्वतंत्रता देते हो ना स्त्रियों को, तो स्वतंत्रता क्यों, स्वतंत्र क्यों है बताओ, तुम कह नहीं सकते, जब स्वतंत्रता आप देते हो तो स्त्री को स्वतंत्र कैसे कह सकते हो, नहीं कह सकते, तो आपकी दृष्टि से धर्म है, कैसा तुम्हारी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से धर्म है, स्त्रियों को कहा कि पति का धर्म है वो तुम्हारा धर्म है, तो पति जिस धर्म को माने उसी धर्म को तुम मानो, हमारा धर्म है ये, तो हमारी दृष्टि से भी वो धर्म है, तुम्हारी दृष्टि से भी धर्म है। बताओ क्या दशा होगी आपकी, भारत की क्या दशा होगी? बताओ इसका नतीजा क्या होगा? खुशियां जैसे करेंगी, आप शिकायत नहीं कर सकते कि रात्रि में सत्संग में आई आ जाती है, अकेले ड्राइवर को लेकर आ जाती है, ये आपको करने का अधिकार नहीं है। कि जब आप सत्संग बताते हो स्त्री स्वतंत्र है तो सत्संग में आ जाएगी। मैं तो सत्संग में नहीं कुसंग में जाने में भी आप पर मना नहीं कर सकते, स्वतंत्र हो। और हमारे धर्म से भी वो स्वतंत्र है, क्योंकि पति का सिद्धांत है वो सिद्धांत को मान्य होता है। आप वो स्वतंत्रता का सिद्धांत है तो स्वतंत्र बनेगी, वो मर्जी आदेश करेगी, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। क्या कर रहे हो आप, किधर जा रहे हो? हम सुधारे के सुधारे हो कि बिगाड़े हो, क्या हो आप? कैसे कहा जाए, कलकत्ता में बागड़ी, बीकानेर की बागड़ियों की पहाड़ी है उसकी बात है। तो आप सोचते नहीं कर क्या रहे हो, अंधे होकर के चल रहे हो। समान अधिकार है, समान अधिकार है। हम कहते हैं स्त्री का विशेष अधिकार है, ये माँ है, तुम बाप हो, तुम्हारे से अधिकार ज्यादा है माँ का। सारे संसार में सबका माँ का अधिकार ज्यादा, पर यह माँ बनना ही बंद करे क्या अधिकार होगा? जो नृप से अधिकार ले करे न पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहतन आदि अकार। जो अधिकार लेकर के अधिकार का पालन नहीं करता उसमें अर चला जाता है, धिक्कार रहता है। अधिकार ले जो नृप से अधिकार ले करे न पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहतन आदि अकार। अधिकार रहता नहीं, धिक्कार धिक्कार रहता धिक्कार। तो आपका क्या अधिकार काम का है? धिक्कार है इसमें, इस बात से आप चेत करो, जब होश में आओ ठीक तरह से। तो बहनों माताओं से कहना है, बच्चियों से कहना है कि बच्चियां आप कृपा करो, बालकों का पालन करो। कष्ट आपको थोड़ा होगा परंतु हम कितने अच्छे हो जाएंगे। वो तो कष्ट सब माताओं को हुआ है, क्या हमारे को जन्म देने में माँ को कष्ट नहीं हुआ है? जन्म देने में, पालन करने में, रक्षा करने में क्या माँ को परिश्रम नहीं हुआ है? पर परिश्रम हुआ है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, पुत्र अगर कल्याण कर लेता है तो माँ का कल्याण मुफ्त में हो जाता है। जननी कृतार्था शास्त्र लिखता है तो माँ का कितना उपकार होता है। स्वतः ही स्वाभाविक कहते वो सपूत बने, अरे सपूत बनता है, कपूत भी बनता है, सब होते हैं हमारे में। पुरुषों में भी सपूत कपूत होते हैं, स्त्रियों में भी सपूत कपूत होते हैं। स्त्रियों के बीच में देखो तो सीता जी भी, सावित्री भी, सीता जी ये भगवान के जी वो स्त्री जाती है, जाती है। सूर्पणखा का भी स्त्री जाती है, तारका भी स्त्री जाती है। तो कैसे तो अच्छे अच्छे होते हैं, तारका भी होती है, सूर्पणखा भी होती है। और हमारे सती सावित्री सीता कुंती माता द्रौपदी आदि ऐसी भी होती है। तो सब तरह के होते हैं, मगर सब जलना की सब तरह के होंगे, बुरी तरह के होंगे। एक दो बालक तो बुरी तरह से होता है, अपनी बालक सुधरते हैं, वो भगवान देते नहीं। बेईमानी बेईमानी पैदा हो जाएगी, मार भोगा शक्ति भोगा शक्ति वाले पुरुष पैदा हो गए, उनकी दशा ये होगी। क्यों भोगा शक्ति से पैदा किए हुए में धर्माशक्ति बड़ी होगी कि धर्म का पालन करेंगे। इस वास्ते ऐसा उपदेश मत दो, कभी दया मत कर। मैं तो कभी सम्मति नहीं देता हूँ, मैं नहीं मानते तो मैं कोई बैर नहीं करता हूँ। ब्याह नहीं करे उसके साथ बैर मेरा नहीं है, द्वेष नहीं है, परंतु मेरी सम्मति नहीं है भाई। हमारे तो हमारे भाई बहन बहुत पैदा हुए, ऐसा चाहते हैं हम।
परिवार नियोजन और गर्भपात के संबंध में हिंदुओं की हो रही दुर्दशा पर आप विशेष दुखी होकर के कहते हैं, तो हमें ये दुख देखा नहीं जाता, इसलिए हमारा क्या सहयोग हो सकता है?
कोई भी आप गृहस्थी हो, क्या क्या हो सकता है? आप हमारी खान हो, आपसे हम पैदा होते हैं, आपसे पालित होते हैं, आपसे रक्षित होते हैं, आप माँ बाप हो, क्या क्या करो, हम लोगों को पैदा करो।
जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिया और प्रचार भी करते हैं कि तुम भी करवा लो, क्या उनको सत्संग में आने का अधिकार है?
नहीं, सत्संग में आवे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारे अधिकार क्यों कहें? जहाँ बुद्धि शुद्ध होने की संभावना है, हमारी मेहनत ऐसी मिली है कि हमने ऐसा कर लिया, अनजान बने में कर लिया, क्या करें? मारे भजन करो, ऐसा हम तो बताएंगे। सत्संग में आने दो, सत्संग में पापी से पापी आने दो, ये तो पापी है, उनको आप नाम सुनाते हो, क्यों करते हो, ऐसे पापी है। अरे पापी उसको नाम जल्दी जरूर सुनाना चाहिए, और पाप करने वालों को सत्संग में जरूर आना चाहिए, जिसने पाप वृत्ति दूर हो जाए, सत्संग के अधिकारी तो सब है। अभी से शुद्राचारो भजते मां मनन्य भाग, अभी चेत पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा सर्व ज्ञान प्लवे नहीं, ज्ञान और भक्ति के अधिकारी होते हुए जो यहाँ सत्संग में जरूर लाना चाहिए, जरूर लाना चाहिए उनको अधिकारी।
क्या साधुओं और कथावाचकों का ये कर्तव्य नहीं है कि वो हिंदुओं को इस दुर्दशा से परिचित करावें और विशेषता से करें?
अब मैं तो कहता हूँ भाई, साधु मैं कैसे दूं, संतों से ही प्रार्थना करता हूँ आप ऐसा करो, जहाँ व्याख्यान देते हो साधु तो सब गुरु है, सब कथावाचक है, तो सभी ऐसे कृपा करो जो हिंदुओं का पतन न हो, नाश न हो, ऐसा करो।
अभी जयपुर में सम्मेलन हुआ था पूरे राजस्थान में, आपका भी आया था,
कहते हैं जयपुर में संतों का सम्मेलन हुआ था अभी, तो आपका भी आशीर्वाद वचन आया था,
पूरे राजस्थान संत समाज का सम्मेलन हुआ।
तुम्हारे क्या आया था?
मैं
तो हिंदू समाज की सुधार निकल, जिसमें एक संतति निरोध का बिल्कुल विरोध करना चाहिए।
मुसलमानों के धर्म में परिवार नियोजन और गर्भपात के विशेष तौर से मनाई है, और
गर्भपात की कहीं अनुमोदन नहीं है धर्मशास्त्र में, हिंदू शास्त्र में कहीं अनुमोदन नहीं है, और ये ऑपरेशन करना, ये संतति निरोध करना कहीं अनुमोदन नहीं है। सरकारी कानून में सरकारी कानून कोई सच्चा है क्या? अब रावण का कानून था कि ऋषियों का खून लाओ, कानून ऐसा राजा का है कौन? राजा रावण है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु है, पुराने राक्षस बहुत श्रेष्ठ थे, वो मंत्रों पर शक्ति मानते थे, शिव शंकर आदि के इष्ट मान करके तपस्या करते थे, जप करते थे, शास्त्रों पर मंत्रों पर उनकी श्रद्धा थी। आज के बड़े बड़े आदमी उनके मंत्रों पर श्रद्धा नहीं है, राक्षसों से महान नीचे हैं, ना शास्त्र पर श्रद्धा है, ना देवताओं पर श्रद्धा है, ना मंत्र पर श्रद्धा है, किसी को शक्ति होती है? पुराने राक्षस थे, मंत्रों पर श्रद्धा रखते थे, मंत्र जपते थे, तपस्या करते थे, ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त करते थे, आज खंडन करते हैं, पर कोई परमात्मा नहीं, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई शंकर नहीं, ऐसे करते हैं अच्छे अच्छे आदमी, वे राक्षसों नीचे है, राक्षसों के समान नहीं है, लो परीक्षा करो उनकी।
मुसलमानों के मुल्ला लोग हैं उनको चार चार शादी करने की इजाजत देते हैं, जबकि हिंदुओं में तो जो विवाह है उसमें भी शादियों का खर्च और दहेज का खर्च ये सब होने से एक शादी भी होनी कठिन हो रही है।
हाँ तो दहेज लो मत ना, दहेज नहीं तो क्या करे, कन्या जिसके घर पर होगी नहीं ले तो कन्या का संबंध नहीं होता, कुंवरी कुंवर रहे क्या करूँ, जनक जी महाराज पश्चाताप कर रहे हैं, क्या करूँ मैं, मेरी कुंवारी कन्या कुंवारी हो जाएगी, चिंता होती है, इस बार जाना पड़ता है, आप लो मत, जो बेटे की माँ हो हम नहीं लेंगे, कई जगह ऐसे नहीं लेंगे, लड़के ऐसे जो नहीं लेंगे। कलकत्ता में एक लड़का था, उसके लिए शिकायत आई, उसकी शिकायत आई सेठ जयदेव जी के सामने कि महाराज ये कहता था हम नहीं लेंगे, ससुराल से कुछ लेंगे ही नहीं, और वो ससुराल वाले प्रेम से आदर से विशेष आग्रह कर देते हैं, लेते क्यों नहीं है? तो जयदेव ने कहा भाई तुम ऐसा क्यों करे, माई कहते हैं वो देते हैं तू ले, तो ज्यादा दबाव डाला तो हाथ यूं रखा उसने, वो मोरा नाक दी, यूं तो लूंगा लूंगा नहीं कभी, ऐसे लड़के हमारे तैयार हो गए, ये बीती घटना, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो आप ऐसे त्यागी बनाओ बच्चों को, आप भी त्यागी बनो, इनको बेटे के साथ लेगा धन और मिठाई मीठी बहुत लगी, खाऊ खाऊ डाकी चलो सूझी खाऊ 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 थोड़ा लावे कोई कोई बीन नहीं थोड़ी लावे तो थोड़ी लावे देखे देख इतक भेजा मारे इतक कुटुंब कैसे है इतक भेजा है यो क्यों वह बहू की करे निंदा बहू की विचार चुपचाप सुन ले परंतु कदई सासू करे कदई बहू का भी समय आ जाएगा पर वो सासू की सेठा नहीं करे हमारी बीन सेवा को करे बीन ने कितना लाड़ रखियो तो निंदा करी अब तो भोग तेरे कर्म है ये दशा होती है तो मतलब हम क्या करें हमारे इतना बड़ा कुटुंब है वो लावे संभाल थोड़ी सी कैसे करें तो थोड़ी सी मिठाई लाए चुपचाप वेड़ी मिठाई बनाओ घर में बना करके खूब बांटो हमारे बेटे के साथ रह सका है कि महाराज आपके कहने से क्या टक्का लगे सका पैसा लगे। अरे 150 रुपये में बहु खरीदी जाए, उम्र भर में एक मनुष्य खरीद जाता है, सस्ता ही है, महंगा कैसे हुआ। लड़की पर असर पड़ेगा, मेरी माँ की महिमा के लिए सासू 150 रुपये खर्च किया, तो वो कोई सफा अनजान थोड़ी है, लड़की को तो पता लगेगा कि नहीं। तो 150 रुपये में एक आदमी खरीद जाए, सस्ता है महंगा है, ऐसा करो वो हो गए जो संभाल आवे अपनी तरफ फल अपनी तरफ बेटे लाए, फिर बांटो सब में हमारे बेटे के साथ संभाल सब मिला दो बैठो, ऐसा करो।
ये परिवार नियोजन संबंधी मार्मिक बातों को कल्याण में छुपाने की कृपा करो।
अब देखो विचार तो करते हैं भाई, अपने करो भाई, देखो देखो भाई हमारा काम धीरे धीरे होता है, हम करने का विचार है हमारा, हम ठीक करते हैं।